ओम शांति। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से ज्ञान चर्चा ग्रुप में आरंभ कर रहे हैं। तो आज हम जो बड़े लंबे समय से प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है, रुक गई थी बीच में, 67 क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, आज 68वां है। तो आज का प्रश्न है, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने तो उत्तर दिया कि स्वयं की पहचान और स्मय की पहचान, अगर ये बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि ये संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कर्म में केवल ये संगम का समय है जब हम श्रेष्ठ तकदीर बना सकते हैं। सारे कल्प के श्रेष्ठ श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो, केवल अभी ही समय है। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, आज भी साकार मूल्य में सर्व प्रकार का वर्षा अभी ही मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा ये स्मृति में रखो तो समर्थ आत्मा हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। तो ये प्रश्न है 11 11 81 की मुरली से लिया गया प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा बुद्धि में स्पष्ट रहे सो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो यहाँ तो बाबा ने एक तो स्वयं की पहचान, दूसरा स्वयं की पहचान, दो बातें हैं। जैसे दादी जानकी जी कहते थे मैं और मेरा कौन, उसी तरह यहाँ से समय की पहचान और स्वयं की पहचान कि समय कौन सा चल रहा है। अगर हमको कहीं रेलगाड़ी में जाना हो और 2 ही मिनट रह गए हैं और रास्ते में बहुत विघ्न आ रहे हैं, तो अंदर में कितनी तड़प होगी भागने की, रास्ता ढूंढने की, कैसे न कैसे करके पहुँच जाएँ। थोड़ी बहुत अंदर में अगर कमजोरी भी हो तो उसमें कमजोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पता ट्रेन निकल जाएगी, छूट जाएगी, भागेंगे, पकड़ेंगे उसको। उसी तरह समय भी उसी गति से अभी चल रहा है। तो अगर हमको समय की स्मृति है कि सचमुच सारे कल्प की प्रारब्ध, पूरे 5,000 वर्ष की 84 जन्मों की प्रारब्ध जमा करने का समय केवल अभी ही बचा है, और वो भी थोड़ा सा बचा है, तो हमारी पुरुषार्थ की स्पीड स्वतः हो जाएगी। स्वतः वो समर्थ बनने की जो बीच में है सूत्र हैं, विधियां हैं, स्वतः आने लगेंगी, टचिंग होती जाएगी। तो समय की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, और समय की पुकार क्या है, समय अनुसार हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, वो अगर हमको स्मृति में रहता है तो भी हम समर्थ आत्मा बनते जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही कि स्वयं की पहचान, हमें स्वयं की पहचान स्वयं बाबा ने आकर दिलाई है कि हम स्वयं कौन हैं, भगवान के राइट हैंड हैं, भगवान की प्रॉपर्टी हैं, समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। तो ये सारी स्मृतियाँ आने से धीरे धीरे आत्मा में समर्थ आती जाएगी। जैसे राजा का बच्चा अगर बचपन में भिखारी के हाथ लग जाए तो उसके स्वास्थ्य संस्कार सारे भिखारी जैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसको स्मृति दिलाई जाती है कि तुम तो राजा के बच्चे हो, तो सारी स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, उसमें वो लक्षण स्वतः आने लग जाते हैं, वो रॉयल्टी, वो बोल चाल, उसकी व्यवहारिकता, उसका देखना, उसका संबंध संपर्क सारा चेंज हो जाएगा। उसी तरह से बाबा ने हम सबको स्मृतियाँ दिलाई हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, स्वयं की स्मृति, तुम्हारे अनादि संस्कार कौन से हैं, आदि संस्कार कौन से हैं। तो सारी स्मृतियाँ दिलाने से स्मृति स्वतः आ जाएगी। और दूसरी स्मृति बाबा ने कहा कि तुम अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करने वाले हो, ये भी स्मृति रहे तो सदा समर्थ आत्मा बन जाएंगे। और समर्थ आत्मा बनने से माया जीत स्वतः बन जाएंगे, और माया जीत आत्मा ही क्या होती है, विघ्न विनाशक होती है, और विघ्न विनाशक आत्माएँ बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान होती हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम सदा समर्थ बने, हमारी स्थिति निरंतर दिन प्रतिदिन समर्थ बनती जाए। एक मुरली है 1979 की है, 12-11 की, तो उसमें बाबा ने हमें हमारी जन्म पत्री के बारे में बताया। अगर वो भी स्मृति रहे तो भी समर्थ आत्मा बन जाएगी। स्मृति रहे कि हम कौन से कुल के हैं, ईश्वरीय कुल के हैं, तो हमारी जो रॉयल्टी भी कैसे हो जाएगी, फिर कितनी ऊंच रॉयल्टी हो जाएगी। वो जो कुल की मर्यादाएं हैं, जो कुल की परंपराएं हैं, जिन पर चलना होता है, वो स्वतः हमारे में आने लगेगी अगर ये स्मृति में रहता है। बाबा कहते तुम्हारे पर दशा कौन सी बैठी है, बृहस्पति वार की दशा बैठी है, सदा सतगुरु वार की दशा है। तुम्हारी राशि कौन सी है, विश्व कल्याणकारी राशि है। पोजीशन कौन सी है, मास्टर सर्वशक्तिवान पोजीशन है। तुम्हारा जन्म कब हुआ, जो बाप के अवतरण की तारीख है वही तुम्हारी तारीख है। जन्म का समय कौन सा है, ब्रह्म मुहूर्त है। तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है, अकुट अचल अविनाशी संपत्ति है। कर्म रेखा कितनी है, निरंतर योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर कर्म योगी, ये कर्म रेखा है। फिर तुम्हारा बुद्धि कितनी बड़ी है, विशाल बुद्धि है। तो ये सारे हमारे जन्म पत्री स्वयं भगवान ने आके लिखी है, हमारे भाग्य का निर्माण किया है, कलम उसने हमारे हाथ में दे दी है, और हमें हमारा फ्यूचर भी स्वतः हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रख दिया कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। मनुष्य को चिंता जब होती है, जो जब वो भविष्य के बारे में उसकी बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती है। अगर भविष्य के बारे में हमको स्पष्ट है कि हमारी निश्चित विजय है ही है, हमारी सफलता नहीं होगी तो किसकी होगी। तो बाबा ने हम सबको आकर हमारे भविष्य के बारे में कितना सुंदर चित्रित किया है कि तुम्हारी कल्प कल्प की विजय है। स्वयं उसने आकर हमारे भव्य बाल पर तिलक दिया है, सदा विजयी भव, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम्हारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। तुमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, तुम विजेता हो कल्प कल्प के। तो स्वयं बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, तो स्मृति स्वतः आती है। और स्मृति आने के लिए कुछ और बातें देखेंगे। मुरलियों में बाबा ने बहुत सारे ऐसे अनेक बातें हमको बताई हैं कि कैसे स्मृति आएगी। जैसे संसार में समर्थ कौन होते हैं, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है उसको बड़ा नशा रहता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है स्वतः स्मृति उसको समर्थ बना देती है। अगर पैसा बहुत है, सारा बैंक में जमा है, लेकिन स्मृति नहीं है तो वो स्मृति भी नहीं आती है। तो उसी तरह अगर हमारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का तो भंडार है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि में नहीं है, वो समय पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो स्मृतियाँ जैसे वो खजाने होते हुए भी ना के बराबर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति रखो, तुम ज्ञान खजाने के मालिक हो, अनेक खजानों से तुमको संपन्न बनाया है, तुम्हारे पास अखुट अचल अविनाशी खजानों की अथाह संपत्ति है, संपत्तिवान हो। बाबा ने कहा ना, जैसे संस्था की स्थापना है तो क्या है, तो क्या बताया था कि ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। किस चीज़ से, ज्ञान के खजाने से। इस ज्ञान खजाने के आगे संसार के सारे खजाने फीके हैं। तो बाबा ने हमको इतने बड़े बड़े खजानों से शोभित किया है, स्मृतियाँ दिलाई हैं, और वो प्रैक्टिकल में हमको दिए हैं, क्योंकि सारा खेल स्मृति और विस्मृति पर है। आज संसार में अगर पद्मों करोड़ों अरबों पति भी हैं, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आती है। लेकिन जो आत्मा निश्चिंत होती है वो नींद आ जाती है, वो अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहती है। तो हमें तो बाबा ने वो अविनाशी संपत्ति दी है जिसको कोई लूट नहीं सकता है। अगर इसको कोई लूट भी ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसके भी बारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये हमको अथाह संपत्ति दी है, अविनाशी ज्ञान। तो हमको ये स्मृति में रहना चाहिए कि सचमुच हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितने हम संपत्तिवान बने हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा रोज अमृत वेले एक डायरी बनाओ। कौन सी, बाबा ने कहा रोज कोई ना कोई एक टाइटल स्मृति में रखो कि मैं कौन हूँ, समर्थ बाप का समर्थ बच्चा हूँ। अगर ये हम ये स्मृति रखे हैं, और बाबा कितने सारे दिन में उस स्मृति को स्वरूप में लाओ, और स्वरूप में लाने से हमारी जो कमजोरियाँ स्वतः खत्म होती जाएंगी। तो अमृत वेले बाबा कहते अपनी जो दिनचर्या है सारी अमृत वेले उसको सेट कर लो कि सारे दिन में हमको इस सुमान का अभ्यास करना है बार बार, ताकि सारे दिन स्मृति हमारी समर्थ स्थिति बनती जाएगी, और उस स्मृति के आधार पर ही आसपास का एनवायरनमेंट, वायुमंडल, वातावरण शक्तिशाली बनेगा। दूसरी बात, बाबा ने कहा बड़े ते बड़े बिजनेसमैन बनो तुम। बिजनेसमैन को क्या होता है, रात की नींद फिट जाती है उसकी, कमाई 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 कहाँ से आए, कितने रास्ते निकालता है वो, कितनी उक्तियाँ रचता है। बिजनेसमैन फिर कितने लोगों का पहले मन जीतता है वो, उसका बिहेवियर, अगर उसके पास जो काम करने वाले हैं, उसका जो स्टाफ है, सहयोगी हैं, साथी हैं, सबका दिल जीत लेता हो, उसके आधार पर उसकी कमाई दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाती है। तो बाबा कहते तुम बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो। एक एग्जांपल भी है, जैसे भक्ति में माला सिमरते तो क्या होता है, एक एक मणके को सिमरते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको ज्ञान रत्नों की माला दी हुई है मैंने, रोज एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है, एक एक वर्षंस कितने का है, बाबा कहते लाखों का, उसका अमूल्य है, कुछ को मोल नहीं कर सकती। तो एक एक ज्ञान रत्न को हम सारे दिन में स्मृति में लाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो मनन करने से मक्खन निकलेगा और मक्खन क्या करेगा, हमको शक्तिशाली बनाएगा। बाबा कहते भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन। तो रोज़ बाबा हमको इतना बड़ा मक्खन देते हैं, अगर हम उसको खाएंगे, उस पर चिंतन करेंगे, हजम करेंगे, तो हमारी स्थिति समर्थ बनती जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे, पहलवान बन जाएंगे, और पहलवान के आगे फिर कोई कमज़ोर टिक नहीं सकता। बाबा कहते माया तो क्या है, कागज़ का शेर है, पेपर टाइगर है। तो हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, अगर हमको ये स्मृति रहे और हम सारे दिन में ज्ञान रत्नों की लेन देन स्वयं ही स्वयं करते रहें। उन बाबा ने कहा ना, उस दिन नए नए पॉइंट कितने आते हैं, एक डायरी लगाओ, लिखो, उसमें नोट करो, टॉपिक निकालो, सर्विस कैसे करें, युक्तियाँ रचो, तो नए नए पॉइंट हम उसमें लिखें कि कौन से पॉइंट है। जैसे आज की मुरली में है कि तुमको सदैव खुशी रहनी चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है, यही मन मरम भाव का मंत्र है। तो कितने सहज तरीके से, अगर सारे दिन में हमको भी स्मृति रहती कि पढ़ाने वाला कौन है, क्योंकि जैसे हम विस्मृत होते तो हमारी बुद्धि जो पुरानी दुनिया की तरफ चल जाती है, और पुरानी दुनिया क्या है, नर्क है। नर्क अर्थात नर्क माना नर, नर और अक, नर्क। नर माना पुरुष और अर्क माना कोई सार नहीं है अभी उसके, नर्क है। अर्क अर्थात उसमें कोई सार नहीं है। तो हमारी बुद्धि सारे दिन पुरानी दुनिया अगर चली जाए तो वही हमारे में चीज़ें आती जाएंगी, वही संस्कार आते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि रोज अपने को स्मृति दिलाओ तो कि तुम कौन हो, ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हो, उसके नैनों के नूर हो, उसके सिर के ताज हो, मैं तुम्हें नैनों पर पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा। और काज के मूल्य में था कि अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो लंगड़ा कर चलते रहेंगे, लंगड़ाते रहेंगे। तो निश्चय बुद्धि भी कैसे बनेगी, जितना हम ज्ञान रत्नों की गहराई में जाएंगे, एक एक वर्षन का चिंतन मनन करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, अपने में लाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, चर्चा करेंगे, तो स्वतः स्मृति समर्थ हो जाएगी। तो बिजनेस मैन बनना है, कितनी कमाई हमको सारे कल्प के लिए जमा करनी है, अभी अनेक जन्मों के लिए। और भी एक मूल्य में है, जो बच्चे इस संगम युग पर ज्ञान धन से संपन्न रहते हैं, वो सारे कल्प में दूसरे धन से भी संपन्न रहेंगे। कितने बड़ा एक गणित है, कितनी बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है, साइंस है, कि जो बच्चे इस संगम युग पर सारस में ज्ञान रत्नों से भरपूर रहते हैं, वो दूसरे धन से भी सारस कल्प संपन्न रहेंगे। और संगम के लिए बाबा कहते हैं अगर आप इस ज्ञान धन से संपन्न है तो दूसरा धन ना ये हो ही नहीं सकता है, उसके लिए भी कहा है। तो ये था कि हमको बिजनेस मैन बन के रहना है, ताकि वो स्मृति हमारी अंदर की कमजोरियां स्वतः जाती जाएंगी। बिजनेस मैन अपनी कमजोरियों को देखकर उनको निकालने का प्रयास करता है, उस पर कोई सोच के हाथ रख के बैठ नहीं जाता है कि मेरे में कमजोरियाँ कैसे निकलूँ कैसे निकलूँ। जो अच्छे बिजनेस मैन हैं निकलने का रास्ता बताते हैं, वो बनाते हैं अपने आप, ढूंढते हैं कैसे निकलूँ, कैसे हमारी इनकम ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़े। नेक्स्ट है कि हमको सारे दिन बाबा कहते हैं कंबाइंड स्थिति में रहो। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है और माँ बाप शक्तिशाली हैं तो फिर बच्चे को चिंता नहीं होती है, माँ बाप उसका सुरक्षा कवच बन के रहते हैं। संसार में भी छोटा मोटा मिनिस्टर है, उसका बच्चे को इतना नशा रहता है, उसको पता मेरा बाप मिनिस्टर मुझे छुड़ा लेगा कैसे ना कैसे। तो हमारा बाप कौन है, ऊंचे से ऊंचा है, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम अथॉरिटी, वो हमारी छत्रछाया है। कल के मूल्य में था ना कि बाप की छत्रछाया में रहो तो सदा सेफ रहेंगे, कल के वरदान में था। कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कितना बड़ी चीज़ है, कोई कुछ भी कर नहीं पाएगा अगर उसकी छत्रछाया में हम निरंतर रहें तो। तो एक कंडीशन है, लेकिन हम सारे दिन में अपने आप को चेक करें कि कितना हम उसकी छत्रछाया में रहते हैं, अर्थात उसके बारे में हम कितना सोचते रहते हैं, वहाँ जो वहाँ रहता है उसके साथ हम कितना समय वहाँ रहते हैं। हमारी अगर किसी के साथ दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो सारा दिन दूसरा कर्म करते हुए हमारा बुद्धि वहीं ले रही है और सोचेंगे कैसे हम टाइम निकाल कर उसके पास आएँ, थोड़ा उसके बात बातें करें, आपस में चर्चा करें, कैसे टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे काम जल्दी जल्दी निपटा के वो काम करेंगे, है ना। जैसे ज्ञान चर्चा के लिए कैसे हम करते, कब शुरू हो, कब शुरू हो, कब शुरू हो, ऐसे हम सारे दिन में थोड़ा भी टाइम निकाल कर कब बाप के पास पहुँचें, कब बाप के पास पहुँचें, कब बाप के पास पहुँचें, तो सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया में अगर हम निरंतर रहेंगे और कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तो भी हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनती जाएगी। ऐसे माँ बाप, बच्चा क्या होता है, माँ बाप की गोद में एकदम सुरक्षित रहता है, उसको निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, पता है उसको माँ बाप बैठे हैं। तो हम भी अगर स्मृति में रखें कि बाबा हमारी छत्र छाया है, वो हमारा साथी है, सर्व सुंदर से उसका अनुभव करें, तो हमारी स्थिति निरंतर समर्थ ना हो ही नहीं सकता है। सारा समर्थ बनने का आधार है स्मृति, इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, ये मंत्र है। तो सारे दिन की स्मृतियाँ हमारी किस दायरे में घूमती रहती है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सोचती रहती हैं, तो उसी के आधार पर हमारी स्थिति भी दिन प्रतिदिन वैसे बनती जाती है। फिर बाबा कहते हैं सबसे जो मुख्य बात है वो है ड्रिल। ये जो सीज़न अभी बीता है इसमें फरवरी महीने की मुरली थी, तो उसमें बाबा ने ड्रिल के बारे में कहा था और उससे 8 फायदे बताए थे हमको। अगर आप बच्चे 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, 4 स्वरूपों की, 2 स्वरूपों की कोई ड्रिल करो, तो उसके हमको 8 फायदे बताए थे। और वो 8 फायदे कौन से थे, वो बाबा ने कहा था अगर ये ड्रिल करते रहेंगे तो मन कहीं खींचेगा नहीं व्यर्थ की तरफ, अयथार्थ के वक्त पर चिंतन पर दर्शन की तरफ मन कभी खींचेगा नहीं। दूसरी बात बाबा ने कहा अगर ड्रिल करते रहेंगे तो मन एक रस रहेगा, और एक रस अर्थात उड़ती कला जो कल संडे की मुरली में था। और कितना बड़ा हम सबको बाबा ने बताया, हमारी स्थिति के आधार पर पूरा संसार आधारित है। कितनी बड़ी कल बाबा ने मुरली में बात कही कि जब तुम सब बच्चे एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उड़ती कला में स्थित हो जाएंगे, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी, अर्थात ये कार्य संपन्न हो जाएगा, उन आत्माओं को भी भिखारीपन से छुड़ा सकेंगे, सदस्य जाएंगे वो आज था। तो बाबा ने बताया उड़ती कला क्या है, ये तुम्हारी स्थिति है, ये कर्मा की स्थिति प्राप्त करने की स्थिति है, ये दाता विधाता बनने की स्थिति है, ये फरिश्ता सो देवता बनने की स्थिति है, ये दूसरों को इष्ट देव अनुभव कराने की स्थिति है, ये देह से नहरे, देह और देह के संबंधों से नहरे रहने की स्थिति है उड़ती कला की। इससे तुम अनेक आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ा सकते हो। तो एक रस अवस्था रहेगी अगर हम ड्रिल करते रहेंगे तो भी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। जैसे जिम खाने में जाते थे किस लिए जाते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए। तो हमारी मन की जो अवस्था है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रिल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो दूसरी बात बाबा ने बताई ड्रिल होने से दूसरा फायदा, मन एक रस अवस्था में रहेगा। फिर तीसरा बात बताई बाबा ने कहा सदा रूप की विशेषता का अनुभव होता रहेगा। हमारा स्वयं का रूप क्या है, परम धाम में चमकते हुए सितारे हैं, संगम पर हम फरिश्ता चमकीली ड्रेस में हैं। तुम्हारी ये चमकीली ड्रेस चलते फिरते दूसरों को समर्थ बना देगी अगर हम उस स्मृति में रहेंगे, देह से ऊपर उठ के रहेंगे, हमारी स्मृति जो है वो देह रूपी मिट्टी से ऊपर उठ के रहेगी तो रूप की विशेषता अनुभव उतरेगी। चौथी बात बाबा ने कही थी आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाएगा ड्रिल करते रहेंगे तो। जब कोई जिम में करता है, वर्जिश करता है, उसको नींद आती है उस समय, उसको अपनी बॉडी की तरफ रहता है, मेरे मसल्स कैसे मजबूत हों, भले कितने पसीना निकल रहा है, उसको नींद थोड़ी आती है उसमें, उसमें तो सोचता है कि मैं कितना और लंबा खींचूं। तो इसी तरह से ड्रिल जो ये हमारा आलस्य अलबेलापन खत्म करेगी। तो हमको ये देखना है कि सारे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, अगर हम ड्रिल करते रहेंगे तो निरंतर हमारी अवस्था एक रस होती जाएगी। और पांचवीं बात बाबा ने कही ये ड्रिल जो है, ये ड्रिल मन में मन मनाभव का यंत्र बन जाएगा। कितनी सुंदर बात है, ये ड्रिल मन में मन मनाभव का यंत्र बन जाएगा, करना नहीं पड़ेगा मन मनाभव, नेचुरल निरंतर हो जाएगा। क्योंकि पहलवान को हमेशा क्या रहती है, अखाड़ा याद दिखता है, पहलवान ही दिखती है सामने उसको, उसको दांव पेच ही दिखती है, अंदर में उसकी वही योजनाएं चलती रहती है, वही षड्यंत्र चलते रहते हैं कि कैसे हमको दूसरों को ये करना है। तो जैसे बाबा ने कहा प्रश्न में कि ये समर्थ स्थिति माया जीत बनाती है, विघ्न विनाशक बनाती है, तो जैसे हमारी अवस्था ड्रिल से हमारी मजबूत होती जाएगी, तो जो भी जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी अनेक प्रकार की माया की भी सूक्ष्म चालें हमारे सामने आएंगी, तो उनका सामना करने के लिए हमारा मन मजबूत होता जाएगा, तो आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाएगा, मन जो है मन ही मन मना वो का यंत्र बन जाएगा। कितनी सुंदर बात है। फिर छठी बात पावन कही कि मन तंदुरुस्त हो जाएगा, मन में जो अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हैं वो खत्म हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो छोटी मोटी हमारी जो है एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है, तो छोटी मोटी बीमारी खत्म हो जाती है। आज जो संसार में वायरस चल रहा है तो अधिकतर क्या कहते हैं, प्राणायाम करो ताकि इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़े। तो जो मन भी है, मन के अंदर अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे वायरस हैं जो हमें ऊंची स्थिति जाने से रोकते हैं, तो अगर हम इस ड्रिल का अभ्यास करते रहेंगे तो मन तंदुरुस्त हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो फिर बावन सातवीं बात कही कि मन शक्तिशाली हो जाएगा, ये ड्रिल करने से मन सदा शक्तिशाली रहेगा। और बाबा ने कहा कि मन शक्तिशाली होने के साथ साथ एक मुख्य चीज़ और, फुल स्टॉप सेकंड में लगा सकेंगे। अगर सामने से कमज़ोर पहलवान आता तो पकड़ लेंगे उसको, आगे नहीं आने देंगे, वहीं रुक जाएगा। इसी तरह परिस्थिति तो आएंगी, विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे, जो बाबा ने प्रश्न का उत्तर भी दिया कि विघ्न आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति विघ्न विनाशक बन जाएगी, माया जीत बन जाएगी, फुल स्टॉप लगा सकेंगे, मास्टर सब शक्तिवान बन जाएंगे। तो ये आठ बातें थी ड्रिल करने से कितना महत्व है। अगर हमको अपनी स्थिति समर्थ बनानी है तो ड्रिल निरंतर करते रहना चाहिए, जब भी मौका मिले।
घबराएंगे नहीं,
घबराएंगे नहीं, बिल्कुल जो भी एग्जाम आएगा घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है अभी कि हमारे पास सारे मेथड हैं उसके सामना करने के, हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, घबराएंगे नहीं, एकदम शक्तिशाली स्थिति रहेगी। तो ये आठ बातें बताएं ड्रिल होने से कितने फायदे हैं। तो पहली बात, ड्रिल करने से क्या होगा, मन कहीं व्यर्थ में, यथार्थ में, नेगेटिव में कहीं खींचेगा नहीं। क्योंकि चार बातें कोई कर रहा आपस में बैठ के, हमारा मन होगा नहीं कि हम यहाँ बैठ के हम भी थोड़ा चस्का इसका उसका अनुभव कर लें, कुछ अपना शेयर करें कुछ, तो मन खींचेगा नहीं कहीं। दूसरी बात है मन एक रस रहेगा, अर्थात उड़ती कला उड़ती जाएगी। तीसरी बात है अपने रूप की विशेषता का अनुभव होने लगेगा, जो हम प्रयास करते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो स्पष्ट अपने को दृष्टिगोचर होने लगे कि सचमुच में वो आत्मा हूँ। चौथी बात, आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाएगा। पांचवी बात, मन ही मन वाला भाव का यंत्र बन जाएगा। छठवीं बात, मन तंदुरुस्त हो जाएगा एकदम। सातवीं बात, मन शक्तिशाली हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो ड्रिल करने से कितने फायदे हैं। नेक्स्ट है, अगर हमको स्वयं को समर्थ बनाना है तो फूड, भोजन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कुछ भी खाते रहेंगे, जो पहलवान लोग होते हैं या गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, उनका खाना पीना बड़ा संयमित होता है। जब वो स्टेज पर जा रहे हैं, जो उनको बोलना है, अगर उसकी आवाज़ ही लय बिगड़ जाए तो कितना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले से वो थोड़ा उसका साइलेंस रहने का अभ्यास करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गले को थोड़ा आराम देंगे। उसी तरह से अगर हमको समर्थ बनना है तो हमारे भोजन पर भी, चाहे वो स्थूल भोजन है, सूक्ष्म भोजन है, हमने खुद देखा है अगर ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाया तो हम खुद दीवान धोखा खाते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस संसार का भोजन कहाँ से आ रहा है, नर्क से आ रहा है, और नर्क सारे में क्या है, उसमें कौन से वाइब्रेशन भरे हुए हैं। भले हम दृष्टि दे के खा रहे हैं, लेकिन वो दृष्टि भी उसी भोजन को असर करेगी जो सात्विक होगा। अगर हम मान लो कोई मांस मीट है और उसको दृष्टि दे के खा ले तो पावन बनेगा। तो संसार का भोजन अभी ही है, बनाने वाले कौन है, उनको पैदा करने वाले कौन है, वो तामसिक हो चुका है एकदम। तो यहाँ भी हम मिर्च मसाले का भी, जो स्थूल रूप से भी, उसका भी थोड़ा परहेज रखेंगे तो भी हमारी जो उड़ती कला होती जाएगी, आज की मुरली में, नहीं आज नहीं, कल की मुरली में, तुमको ज़्यादा भोजन करने की, जो बच्चे ज़्यादा याद में रहेंगे वो भोजन भी बहुत थोड़ा करेंगे, थोड़े में अपना गुजारा कर लें। तो सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि भोजन का जैसा कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, मन को समर्थ बनाना, शक्तिशाली बनाना, तो हमारा स्थूल भोजन और सूक्ष्म भोजन, सूक्ष्म अर्थात शुद्ध संकल्पों का भोजन, हम आंखों से कौन सा भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं सामने, सोच रहे हैं तो किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, भले हम यहाँ बैठे हैं लेकिन अंदर के संसार में क्या क्या चल रहा है, मुख से क्या बोल रहे हैं, इन कानों से कौन सा भोजन कर रहे हैं, अगर किसी की बात हमको सुनाई दे रही है, कौन सी बात को हमने यहीं से बाहर जाने दिया और कौन सी बात को अंदर जाने दिया, वो भी हमको इफेक्ट कर रही है। तो बाबा कहते इस पर भी और सारे दिन में हमको स्मृति में होली हंस हूँ, होली सोल हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, जो हमारा मुख्य फाउंडेशन है अपनी अवस्था को चरम अवस्था, उच्च अवस्था बनाने के लिए प्योरिटी। और प्योरिटी हमारी स्वतः बढ़ती जाएगी जब हम ज्ञान खजाने के चिंतन में रहेंगे, अच्छा संग करेंगे, भोजन ठीक से होगा, ड्रिल करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे सारे दिन ज्ञान मतनों का, अपनी डेली डायरी बनाएंगे, स्वयं पर नज़र रखने की जरूरत है, तो हमारा निरंतर दिन प्रतिदिन प्रगति होती जाएगी और समर्थ आत्म बन जाएंगे। तो ये बाबा का प्रश्न था कि कौन सी बात बुद्धि में स्पष्ट हो तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो इसमें बाबा ने दो बातें कही, एक तो स्वयं की पहचान, हु एम आई, मैं कौन, और समय की पहचान, एक इसमें कौन सा चल रहा है। सारे संगमयुग का अंतिम समय है, ब्राह्मण चोटी होते हैं, तो इसमें हम संगमयुग भी बाबा कहते हैं टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पर हम खड़े हैं। तो टॉप पॉइंट पर खड़े हैं तो हमको कहाँ देखना है, पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे की यात्रा हमने कर चुकी। बाबा ने एक दिन साकार मूल्य में ये भी कहा था एक बार कि पीछे देखना अर्थात रावण को देखना, ये साकार मूल्य के माँ वाक्य हैं, पीछे के बारे में चिंतन करना अर्थात रावण को देखना। तो पीछे कौन से दो जीवन है, एक तो हमारा शूद्र जीवन है और दूसरा ब्राह्मण जीवन में वो बातें जहाँ जहाँ हम कहीं फेल हुए हैं या किसी के साथ हमारा ऊंचा नीचे हुआ है, वो चिंतन करने की जरूरत नहीं है, आगे हमेशा देखना है। तो स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान, बाबा कहते हैं अगर ये बातें स्मृति में है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ प्रलब्ध पाने वाली आत्मा हूँ, तो ये स्मृति स्वतः समर्थ बना देगी और समर्थ आत्मा ही माया जीत बनेगी और माया जीत आत्मा विघ्न विनाशक होगी और जो विघ्न विनाशक होंगे वो सदा मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे। कितनी सुंदर बातें हैं। इसी के ऊपर फिर बाबा ने कहा हमेशा कंबाइंड रूप में रहो, उसमें कंबाइंड रूप में भी एक मुरली में बाबा ने चार बातें कही थी कंबाइंड के बारे में, वो एग्जाम्पल दी थी। कंबाइंड कौन कौन सा, एक तो जैसे बाप और दादा कंबाइंड है ऐसे तुम बच्चे कंबाइंड रहो, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ऐसे तुम बच्चे बाप के साथ कंबाइंड रहो, जैसे शिव और शक्तियां कंबाइंड है ऐसे तुम बच्चे कंबाइंड रहो। तो कितने सारे मुरली में, लेकिन समय आने पर अगर हमको वो स्मृति में आती हैं तो लगता है कि बाबा की कृपा है और धीरे धीरे हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो रहा है। तो स्वयं को समर्थ बनाने के लिए हमको स्वयं पर ही नज़र रखने की जरूरत है। तो एक तो देखना है कि ड्रिल सारे दिन में करनी है, देखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको शक्तिशाली बनाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको शक्तिहीन बनाती हैं, क्योंकि अंतिम समय, अंत में हमको अकेले जाना है। तो इस समय जो है अंतिम समय चल रहा है, अचानक एवरेडी बहुत काल का अभ्यास, संडे के मुरली में था बहुत काल के अभ्यास के ही बहुत काल का राज्य भाग्य पाएंगे, लेकिन उस समय यह भी था कि बाबा कहते थोड़े समय के बाद बहुत काल का भी खत्म हो जाएगा, 86 की बात है। अब तो कौन सा समय चल रहा है हम सभी जान नहीं सकते तो वो अंतिम समय चल रहा है, समय और स्वयं की पहचान। हाँ, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ का अंतिम वर्ष 86 था, तो हमारे लिए तो इतना सौभाग्य कि थोड़ा टाइम हमको ये दिया है, कम से कम लॉकडाउन लगा, कुछ लगा है, भाग दौड़ी संसार की सारी खत्म हो गई, तो हम निश्चिंत हो गए जो भी हमको टाइम मिला सारे दिन में उस पर हम अपने पर पूरा फोकस दे के ड्रिल करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। उपराम, साक्षी, दृष्टा, ये सारी अवस्थाओं का अभ्यास करेंगे तो हमारी स्थिति निरंतर समर्थ बनती जाएगी। ठीक है, ओम शांति।